Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Gurudev. Jai Gurudev, Jai Sri Gurudev. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada. Srila Prabhupada ki. जगत गुरु शील प्रभुपाद की राधा राज बिहारी भगवान की श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की गौर निताई भगवान की उल प्रेमानंदे हरि प्रत्येक दिन की भांति आज हम लोग भागवत गीता के प्रथम अध्याय का 45वां नंबर श्लोक पर चर्चा करेंगे। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय मात्रा शरणे हन्यो तत्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणय खात्राश्चारणे हन्यो तत्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय आत्रासारणे हन्यो तत्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय आत्रासारणे हन्यो तत्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणय ಸಹಸ್ರಾಚಾರಣೇಹನ್ಯು ತದ್ಮೇ ಕ್ಷೇಮತರಂ ಭವೇತ್. ಯದಿ ಮಾಮ ಪ್ರತೀಕಾರಂ ಸಹಸ್ರಂ ಸಹಸ್ರಪಾಣಯ ಧಾತರಾಷ್ಟ್ರಾರಣೇಹನ್ಯು ತದ್ಮೇ ಕ್ಷೇಮತರಂ ಭವೇತ್. ಮಾಂ ಪ್ರತೀಕಾರಂ ಅನುವಾದ ತಥಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಭಾಜಿಗೆ ದ್ವಾರ. ಯದಿ ಯದಿ ಮಾಂ ಮುಜ್ಕೋ ಅಪ್ರತೀಕಾರಂ ಪ್ರತಿರೋಧ ನ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಕಾರಣ ಅಶಸ್ತ್ರಂ ಬಿನಾ ಹಥಿಯಾರಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರ ಪಾಣಯ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪುತ್ರ ರಣೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಮೇ ಹನ್ಯು ಮಾರೆ ತತ್ ವಹ ಮೇ ಮೇರೆ ಲಿಯೆ ಕ್ಷೇಮತರಂ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ್ ಭವೇತ್ ಹೋಗಾ. ಯದಿ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪುತ್ರ ಮುಜ್ ನಿಹತ್ತೆ ತಥಾ ರಣಭೂಮಿ ಮೇ ಪ್ರತಿರೋಧ ನ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಕೋ ಮಾರೆ ತೋ ಯೇ ಮೇರೆ ಲಿಯೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ್ ಹೋಗಾ. ಯದಿ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪುತ್ರ ಮುಜ್ ನಿಹತ್ತೆ ತಥಾ ರಣಭೂಮಿ ಮೇ ಪ್ರತಿರೋಧ ನ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಕೋ ಮಾರೆ ತೋ ಯೇ ಮೇರೆ ಲಿಯೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ್ ಹೋಗಾ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ದೋರ. ಕ್ಷತ್ರಿಯೋಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ಐಸಿ ಪ್ರಥಾ ಹೇ ಕಿ ನಿಹತ್ತೆ ತಥಾ ವಿಮುಖ ಶತ್ರು ಪರ್ ಆಕ್ರಮಣ ನ ಕಿಯಾ ಜಾಯ್. ಕಿಂತು ಅರ್ಜುನ್ ನೆ ನಿಶ್ಚಯ ಕಿಯಾ ಕಿ ಶತ್ರು ಭಲೆ ಹಿ ಇಸ್ ಪರ್ ವಿಷಮ ಅವಸ್ಥಾ ಮೇ ಉಸ್ ಪರ್ ಆಕ್ರಮಣ ಕರ್ ದೇ ಕಿಂತು ವಹ ಯುದ್ಧ ನಹಿ ಕರೆಗಾ. ಉಸ್ನೆ ಇಸ್ ಪರ್ ವಿಚಾರ ನಹಿ ಕಿಯಾ ಕಿ ದೂಸರಾ ದಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಿತನಾ ಉತ್ಸುಕ ಹೈ. ಇನ್ ಸಬ್ ಲಕ್ಷಣೋ ಕಾ ಕಾರಣ ಉಸ್ಕಿ ದಯಾದ್ರತಾ ಹೈ ಜೋ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತ ಕೆ ಕಾರಣ ಉತ್ಪನ್ನ ಹುವಾ ಹೈ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂಜನ ಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರ ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋವಿಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಭಗಾಂಧಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುನ್ ಭೈಸ್ವಾಸ್ಯ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗರ ಜಾತಂ ಸಗನ ರಘುನಾಥಾನಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾವಧೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾಂತಾಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ಶ್ರೀರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರು ಭಿಕ್ಷಾ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೋ ಅರ್ಜುನ್ ಜೋ ಹೇ ಯುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಮೇ ಪರಿವಾರ ಕೋ ದೇಖ ಕರ್ಕೆ ಔರ್ ಅಪ್ನೆ ಸಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ಕೋ ದೇಖ ಕರ್ಕೆ ನಾತೆ ರಿಶ್ತೆದಾರೋ ಕೋ ದೇಖ ಕರ್ಕೆ ಬಹುತ್ ಭಾವುಕ ಹೋಗೇ ಔರ್ ಬೋಲೆ ಕಿ ಅಗರ್ ಇನ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ ಯುದ್ಧ ಕರ್ಕೆ ಜೀತ ಭಿ ಲೇ ತೊ ಕ್ಯಾ ಲಾಭ ಹೈ, ಜಿಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಮೈ ಕರೂಂ ವಹಿ ನಹಿ ರಹೇಂಗೆ ತೊ ಕ್ಯಾ ಫಾಯ್ದಾ. और इससे तो लगता है कि अपना कुल ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है, धृतराष्ट्र के पुत्र भले ही युद्ध भूमि में हमसे लड़ने के लिए या मारने के लिए उद्यत है, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और क्षत्रिय धर्म के नाते निहत्थे पर वार करना भी अपराध है। अर्जुन तो नीति की बात कर रहे हैं कि निहत्थे व्यक्ति के ऊपर हथियार नहीं उठाना। जैसे मिलिट्री में अगर हाथ उठा देता है व्यक्ति सामने वाला दुश्मन और धनुष रख बंदूक रख देता है तो उस पर हथियार नहीं चलाया जाता है, आज भी वो नियम है, लेकिन अतताइयों के लिए नियम नहीं है। अब धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो अतताई बन चुके हैं, उन्हें अब नियम का कुछ पालन करना दिखता नहीं है। मगर अर्जुन को ऐसा भक्त होने के नाते ऐसी दया आ रही है कि अपने कुल का वध करने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियां जब दूषित हो जाएंगी तो अवांछनीय वर्णसंकर बच्चे पैदा होंगे जिससे कुल में पिंडदान देने के लिए कोई शेष नहीं रह जाएगा। जो पितर हैं वो भी गिर जाएंगे। ये सब बातें सोच के अर्जुन क्षोभ में पड़ रहे हैं कि पितरों का क्या होगा, जिन पितरों को पुत्र ही पिंडदान देके उनको ऊपर उठाते हैं। जब कुलवंश ही नाश हो जाएगा, अवांछित वर्णसंकर उत्पत्ति हो जाएगी, तो उन बच्चों के पिंडदान देने से पितरों को नहीं मिलेगा, पितर भी अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। ये सब बातें सोच करके अर्जुन धनुष बाण रख देते हैं और कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान इसके पहले श्लोकों में बहुत समझाते हैं कि ऐसा ज़्यादा विद्वान मत बनो, जो भी धर्म अधर्म है वो सब हमसे ही निकला है, अधर्म अधर्म की बात मुझे मत सुनाइए, शंकर वर्ण होंगे क्या होंगे वो सब मुझे मत बताइए, लेकिन आपका क्षत्रिय धर्म है युद्ध करने के लिए और मेरी इच्छा युद्ध करो, क्योंकि ये उसी के पात्र हैं। ये समझाने से नहीं मानने वाले हैं, हमने बहुत कोशिश किया कि आपस में न लड़ें, मगर धृतराष्ट्र के पुत्र जो है इतने अभिमानी हैं और वो सोचते हैं कि इनके पास सीमित सेना है, हमारे पास बड़े बड़े योद्धा हैं, आज कई अक्षौहिणी की सेना है और हम इनसे बलशाली हैं, हमारे तरफ भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, बड़े बड़े महारथी हैं, तो विजय तो हमारे पक्ष की होगी। यह उसके अंदर भरा हुआ था, लेकिन जब सैन्य निरीक्षण देखा उसने तो जो द्रुपद के पुत्र ने जो पांडवों की सेना को सजाया था उसको देख करके और दुर्योधन की सेना को देख करके धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं कि देखिए बहुत अच्छे से सैन्य बल संभाला है, इस दुमन जो है द्रौपदी का भाई है और पांडवों का सेना रक्षक है, और उसने जो व्यूह की रचना किया है वो भी सराहनीय है। तो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि मेरे तरफ से कैसा है, आपके तरफ से भी बड़े बड़े योद्धा हैं, ये भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, बड़े बड़े महारथी हैं, लेकिन उधर भी सैन्य बल अच्छा से संभाला हुआ है। तो धृतराष्ट्र सुनना चाहता था कि हमारी सेना उससे बहुत तगड़ी है, लेकिन संजय ने तो न्याय की बात किया है। संजय का जैसा देखा था सैन्य बल ऐसा ऐसा उनसे बता दिया। तो धृतराष्ट्र जो है वो हमेशा चाहता था कि हमारे पुत्रों का विजय हो, क्योंकि वो अध्यात्म से भी अंधा था, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था और मोहग्रस्त था। पुत्र मोह में वो कुछ भी करने को तैयार था और वो चाहता था कि सेना ये इसका बेटा दुर्योधन जो है युवराज बने। वो कभी नहीं चाहता था कि पांडवों के पुत्र युवराज बने। तो भी पांडव लोग को इच्छा नहीं थी कि हम युवराज बने। वो किसी तरह से लड़ाई न करते हुए गुजर सफर चाहते थे, कुछ भी हमें मिल जाए उसमें हम गुजर कर लेंगे। लेकिन वो तो कहता था मुझे सुई के अग्रभर भी नहीं देना है, सुई का नोक रखने पे जितनी जमीन लगती है उतना भी मैं बिना लड़ाई नहीं दूंगा। तो इस कारण भगवान को लड़ाई के लिए अर्जुन को तैयार करना पड़ा। लेकिन अर्जुन बार बार मोहग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने ही चाचा भतीजे बेटे मामा ममेरे और रिश्तेदारों को देख करके वो सोचते थे कि सामने कौन दुश्मन कौन है, सब तो अपने ही हैं, इनको मार के क्या फायदा है, हमें नहीं चाहिए राज और मेरे नियते पर इनको वार करने दीजिए, मैं सह लूँगा लेकिन युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान ये चाहते थे कि अर्जुन लड़े, क्योंकि धर्म की जगह पे वो थे, अधर्म की जगह पे ये कौरव थे, लेकिन पांडवों की मदद करना चाहते थे भगवान। तो भगवान जिस तरफ रहते हैं विजय निश्चित उधर ही है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूतिर्धवा नितिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान है जहाँ पर श्रेय है, लक्ष्मी है, सब कुछ वहाँ पे है। जहाँ भगवान नहीं है वहाँ पर कोई नहीं है। इसलिए भगवान चाहते हैं अपने भक्तों की रक्षा करना, और जो अभक्त होता है उसको भगवान कभी नहीं चाहते हैं। तो ये लोग अभक्त हैं और पांडव लोग भक्त हैं, इसलिए पांडवों की रक्षा करना चाहते हैं भगवान। बाद में अर्जुन तैयार होते हैं। इसलिए ये हमें जानना चाहिए कि भगवान उसके पक्ष में रहते हैं जो भगवान का भक्त होता है। हम सब भक्त बनने के लिए आए हैं, भक्ति में हमारा मदद भगवान करेंगे, निश्चित करेंगे। ऐसा कभी निराश नहीं होना चाहिए। कुछ तकलीफ भी आ सकती है, लेकिन उस तकलीफ में निराशता नहीं होनी चाहिए कि हम भक्ति नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, इससे अच्छा भौतिक जीवन है, सब परिवार छोड़ के क्यों आया, वो जीवन तो अच्छा था। नहीं, भक्ति से बड़ा कोई अच्छा जीवन नहीं है। भगवान की भक्ति करना सर्वोत्तम है। जैसे रुक्मिणी जो है भगवान कृष्ण को वर के रूप में बचपन में ही चुन लिया था, क्योंकि नारद मुनि जब जाते थे पौंडक के घर पे, रुक्मिणी के पिताजी के घर पे, तो कृष्ण की प्रशंसा बहुत करते थे, बहुत सुंदर है, ऐसा ऐसा घुघराले बाल हैं। तो बचपन में ही वो सुना करती थी, तो मन ही मन कृष्ण को अपना पति रूप में मान लिया था। जब शादी का समय हुआ तो पिता तो चाहते थे कि कृष्ण से ही शादी होगी, लेकिन उनका भाई जो था वो थोड़ा बदमाश था, उसने कहा नहीं, हम जहाँ बोलेंगे वहाँ शादी करना, कृष्ण मेरा दुश्मन है, उसके यहाँ नहीं शादी करना। तो इस पर बहुत रुक्मिणी जी को कभी कभी दुख लगता था कि मेरा भाई रुक्मिणी समझेगा कि नहीं समझेगा, और पिताजी तो राजी हैं लेकिन ये बहुत जिद्दी है। तो वो करना चाहता था शिशुपाल से, लेकिन रुक्मिणी का दृढ़ विश्वास था मेरा शादी कृष्ण से ही होगी। लेकिन जब स्वयंवर रचा गया तो बहुत देश दुनिया से बड़े बड़े राजा लोग आए अपना अपना बारात पे करके। रुक्मिणी ने सोचा कि क्या ये शेर का अंश सियार ले जाएगा। भगवान कृष्ण का शेर से उपमा दे करके उन्होंने सोचा कि मैंने तो शेर को चुना है, ये सियार लोग थोड़ी उसके अंश को ले जाएंगे। दृढ़ विश्वास था कृष्ण के ऊपर, किसके उनके ऊपर कृष्ण भक्ति थी। कृष्ण भक्ति के कारण उनको विश्वास था कि कृष्ण ही मुझे ले जाएंगे। लेकिन जब ये स्वयंवर रच गया तो इसमें उन्होंने सोचा कि कृष्ण को पता है कि नहीं, तो अपने पुरोहित ब्राह्मण को बुला करके रुक्मिणी जी ने एक चिट्ठी लिख के दिया कि प्रभु ऐसा ऐसा है, अब मैं धर्म संकट में हूँ, मैंने आपको मन ही मन पति मान लिया है और मेरा भाई रुक्मी जो है नहीं चाहता है, जिद कर लिया, पिता को भी डांट देता है, तो आप हमारी रक्षा कीजिए और मैं पत्रवाहक भेज रही हूँ और पत्र देखते ही आप व्यवस्था कीजिए और मैं इतने टाइम पर जाऊँगी देवी के मंदिर में, इसी समय पर आप आकर के मेरा हरण कीजिए। जैसे जैसे वो पत्र लिखे थे पढ़ करके भगवान ने ब्राह्मण का स्वागत किया, अच्छा से उनको सत्कार किया और फिर भगवान ने प्रस्थान किया। रथ पर भगवान पहुँचे और बहुत अच्छी चौकसी सेना उनके तरफ लगी हुई थी। कृष्ण बहुत छलिया है, ऐसा है कैसे भी आ सकता है, तो सारे किले बंदी कर दिया था रुक्मिणी ने, किसी तरह से कृष्ण का प्रवेश न हो सके और सफलतापूर्वक शादी को करना चाहता था। फिर रुक्मिणी का यह सैन्य बल देख करके रुक्मिणी बहुत चिंता में पड़ जाती थी कि क्या भगवान आ पाएंगे, क्या इस किला बंदी से प्रवेश कर पाएंगे, यही सोचती थी और बहुत चिंतित थी। देवी का दर्शन करने गई तो देवी से गौरी माता से प्रार्थना कर रही हैं कि माता मेरी इच्छा की पूर्ति कीजिए। वहाँ से एक फूल गिरा तब उनको लक्षण पता चल गया कि हमारा फेवर में कुछ शुभ दिखाई दे रहा है। बाहर निकलती हैं तो कृष्ण अपना रथ लेकर के खड़े हैं और जैसे बाहर निकली रथ पर उठा के बैठा के और कृष्ण रथ लेके रवाना हो गए। सभी राजा और सभी जितने सैनिक थे देखते रह गए, जैसे सिंह अपना शिकार उठा ले आके भेड़ियों के बीच से, उसी प्रकार से भगवान ने रुक्मिणी को उठा के हरण कर लिया। एक्चुअली वो राक्षस कर्म किया भगवान ने, ऐसे वैदिक शास्त्र के अनुसार शादी विवाह नहीं होता है, लेकिन भगवान जो कार्य करते हैं वही धर्म हो जाता है। भगवान से ही धर्म निकलता है, धर्म से भगवान नहीं निकलते। तो उसको लेके चले उसके पास, इसने रुक्मिणी ने पीछा किया, लड़ाई भी हुई, रुक्मिणी को मारे, फिर रुक्मिणी ने बचाया, प्रभु मेरा भाई है, आपका साला है, छोड़ दीजिए। रुक्मिणी ने उसकी रक्षा किया। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान जब चाहते हैं जिसको तो चाहे कितना भी उस पर संकट आए, कभी संकट नहीं कुछ काम कर सकता है, भगवान के आगे कोई संकट नहीं है। भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसकी कर देंगे, जिसकी नहीं चाहते हैं उसकी नहीं करेंगे। तो जो भगवान का भक्त होता है उसके लिए नियम नहीं देखते भगवान। अब भगवान ने ये नहीं देखा कि मैं रुक्मिणी को इस तरह से हरण कर रहा हूँ तो ये राक्षस विवाह होगा। वो ये देखे कि उसके अनन्य भक्ति जो है वो मेरे ऊपर कितनी प्रगाढ़ है। इसलिए भक्त को असल भगवान श्री कृष्ण भक्तों के बस में होते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कर्म किया। फिर उसके बाद उन्होंने विधि से विवाह शादी किया भगवान ने। लेकिन कहने का मतलब यह है कि भगवान नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, लेकिन मजबूर हो गए कि ये लोग कुछ बेमानी कर रहे हैं, ये किंच नहीं देना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने कहा गया अब यही धर्म है कि युद्ध करो, यह धर्म नहीं है। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि अधर्म है, इससे बाण शंकर बच्चे पैदा होंगे, सब स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और स्वतंत्र हो जाएंगी, किसी भी पुरुष के साथ संबंध बनाएंगे, उससे जो बच्चे पैदा होंगे बाण शंकर हो जाएंगे, उससे हमें पितरों का पिंडदान में ही मिलेगा। लेकिन भगवान ने कहा कि ये धर्म यही है, मैंने धर्म बना दिया है, अभी मेरी इच्छा है ये धर्म है, ये अधर्म तो ये लोग कर रहे हैं, इसलिए युद्ध कर। तो भगवान की इच्छा से युद्ध करने के लिए अर्जुन तैयार हुए। कोई भी व्यक्ति जब अपने परिवार से ही युद्ध होने लगता है तो सोचता है कि किसके साथ युद्ध कर रहा हूँ। उसी प्रकार से एक भक्त होने के नाते अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहे थे, लेकिन भगवान ने उनको कहा कि जब नहीं करोगे उल्टे उस समय तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी, तुम नपुंसकता को प्राप्त होगे, तुम्हें लोग हिजड़ा कहेंगे, तुम युद्ध स्थल से भाग गए ऐसा समझेंगे। तो बहुत धिक्कारा भगवान ने, अर्जुन तैयार हुए। तो धर्म के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, अधर्म पे पैर नहीं रखना चाहिए। कृष्ण भगवान कभी भी अधर्म करने के लिए नहीं कहते थे किसी को प्रेरित नहीं करने, क्योंकि धर्म का नियम भगवान ने बनाया है, उस नियम को तोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन अधर्मी लोग जब अन्याय करने लगते हैं तो कभी कभी भगवान को अपने बनाए हुए नियम को भक्तों के लिए तोड़ना पड़ता है, अपने लिए नहीं तोड़ते, भक्तों के लिए। भगवान कहते हैं मेरा मान सम्मान जाएगा चलेगा, लेकिन भक्तों का मान नहीं जाना चाहिए, भक्त वत्सल इसलिए भगवान कहा जाता है। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोगों को शुभ अवसर मिला है, नहीं तो हमें गीता क्या पता था, भागवतम क्या पता था, चैतन्य चरितामृत क्या पता था, चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोग को मालूम नहीं था जब हम गांव में थे। लेकिन प्रभुपाद जी की असीम कृपा से आज हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवत गीता पढ़ रहे हैं और चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, ये प्रभुपाद जी की कृपा। पूरे विश्व भर में प्रभुपाद जी ने इस संस्था का प्रचार किया, आज पूरे विश्व भर में लोग लाभान्वित हो रहे हैं, भक्त बन रहे हैं और जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। इसलिए हमें जो है ये कोई ऑर्डिनरी संस्था नहीं समझना चाहिए, ये बहुत ही त्याग से प्रभुपाद जी ने बनाया है और बहुत मेहनत किया है इन्होंने। हम लोग तो आज यहाँ के एसी में बैठ रहे हैं, बड़े हाल में बैठ रहे हैं, प्रभुपाद जी का अभी आप लोग वृंदावन में देखेंगे तो उनका रहने का जो घर, स्टडी करने का और किचन, सब एक ही छोटा सा रूम है, उसमें फैन भी नहीं था, मोमबत्ती जला के किताबें लिखते थे। आज हम लोगों को इतनी सुविधा प्रभुपाद जी करके दिए हैं तो हमें प्रभुपाद जी किताबों पढ़ना चाहिए और पढ़ के ज्ञान अर्जित करना चाहिए और दूसरों को बांटना चाहिए। प्रभुपाद जी ने यह सनातन धर्म का प्रचार किया है और इसमें किसी जातिवाद का भेद नहीं है। हम ये किसी से नहीं पूछते आप कहाँ से आए, किस जात के हैं। एक बार कोई ये मीडिया वाला या प्रभुपाद जी से पूछने लगा कि प्रभुपाद जी आप गरीबों को भक्त क्यों नहीं बनाते हैं, तो बोले गरीबों को कहा, हमने नोटिस बोर्ड लगा दिया है उधर, गरीबों को नहीं भक्त बना रहे हैं, झोपड़ पट्टियों में नहीं जाते, कैसे मालूम आपको नहीं जाते, तो आप जाइए। तो प्रभुपाद जी कभी डरते नहीं थे, बोले आप जाइए। उसने बोला मेरा काम नहीं, तो बोले तुम्हारा काम नहीं, तो कहा मेरा काम है, हमने सब ठीका लिया है, तो हमें एडवाइज करते हो इसलिए तुम भी जाओ। हम तो ऐसा कहीं बोर्ड लगा के नहीं रखा गेट पर कि गरीब लोग मत आओ, अछूत लोग मत आओ, सबके लिए तो ये मंदिर खुला है। आओ, प्रसाद खाओ, कीर्तन करो, भजन करो, मंदिर में रहो। हमने तो कहीं ऐसा नहीं लिखा कि नहीं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। आप कैसे बोल दिया? तो प्रभुपाद जी ने कहीं पर ऐसा नहीं कहा है कि ये हमारा बड़े लोगों के लिए मंदिर है, बड़ी जात के लिए है, छोटी जात के लिए नहीं है। ये सबके लिए प्रभुपाद जी ने दरवाज़ा खुला रखा है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो प्रभुपाद जी की शरण में आए हैं और प्रभुपाद जी का शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जिससे हम दिनों दिन उन्नति कर रहे हैं। प्रसाद ग्रहण करना भी एक भक्ति है। प्रसाद ही हमें खाना चाहिए, कभी भी बिना भगवान को अर्पित किए अन्न जल वस्त्र नहीं ग्रहण करना चाहिए। जब भगवान को हम अर्पित करते हैं तो प्रसाद हो जाता है, जब हम भगवान को नहीं चढ़ाते तो पाप हो जाता है। कभी मुझे पाप नहीं खाना चाहिए। पाप तो बहुत खा लिया हम लोगों ने, लेकिन जब ये ज्ञात हो गया कि अब मुझे पाप नहीं खाना चाहिए तो हर चीज़ जो भी है वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। अन्न जल वस्त्र, वस्त्र भी भगवान को चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने जीवन को बिताना चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, हम भक्ति में अग्रसर नहीं हो पाएंगे। आचार व्यवहार पे ध्यान देना चाहिए, आहार आचार व्यवहार, वैष्णव सदाचार, ये हमेशा भूलना नहीं चाहिए। कहीं ऐसी मिस्टेक न हो जाए कि हमें वैष्णव अपराध हो जाए। वैष्णव अपराध से सदा बचना चाहिए। कभी भी अपने से बड़े भक्तों का आदर करना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए और उनका कभी प्रतिशोध नहीं करना चाहिए। विनम्र भाव से भक्ति का तो पहला लक्षण है विनम्र होना चाहिए। विनम्रता से ही भक्ति हमारी बढ़ सकती है। अगर विनम्र नहीं है तो भक्ति नहीं आ सकती है। आप किसी भी साधु को देखिए, वो कितना विनीत भाव से रहता है। अगर वो क्रुद्ध होता है तो साधारण व्यक्ति जो दुराचारी वो भी कहता है कौन से साधु है आप, अरे आपको तो क्रोध पे आपका काबू ही नहीं है, आप तो एकदम क्रोधी है। काम क्रोध मद लोभ, ये हमारे भक्ति के लक्षण को खत्म करते हैं। काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्र, ये सब रजोगुण के कारण उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार से धुआं जहाँ निकलता हो समझना चाहिए अग्नि है, उसी प्रकार से काम हमारे शरीर के अंदर हमेशा विद्यमान है। थोड़ा सा चिंगारी लगने से जग जाता है और काम जब प्रकट हो जाता है तो पूरा संहार कर देता है। काम को बस करना बहुत जरूरी है साधु जीवन के लिए। काम पर काबू पाना चाहिए। चैलेंज भी नहीं करना है कि हम काम पर काबू पा लिया है। माया देवी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी भक्ति में उन्नति हो। और काम क्रोध मद लोभ ये दुश्मन हमारे अंदर न प्रवेश कर पाए, ये हमारे दुश्मन हैं, हमारी भक्ति लता जी को हरदम नष्ट करते रहते हैं। क्षण क्षण पर भी हमें परीक्षा लेते हैं, इसलिए इनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। इस जीवन में भक्ति लाइन में आने के लिए कभी भी काम क्रोध मद लोभ से बचना चाहिए। लोभ के कारण भी लोग फंस जाते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं, भौतिक सुविधाएं लेने के लिए चले जाते हैं। जब तक हमारी भौतिक सुविधाएं या शरीर से संबंधित चीज़ों में लालसा रहती है तब तक हमें भक्ति मार्ग से खींचती रहती है, हम भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकते हैं। शारीरिक संबंध जो है हमारा, चाहे वो परिवार से हो, चाहे धन से हो, चाहे किसी प्रकार का जो लोभ है, वो भक्ति जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए लोभ भी हमारा दुश्मन है। हमें संपन्न रहना चाहिए जितने में हम हैं। हमको एक धोती कपड़ा चाहिए, प्रसाद चाहिए, अब भगवान की भक्ति चाहिए, कीर्तन चाहिए, भजन चाहिए, प्रवचन चाहिए, इसमें रुचि बढ़ाना चाहिए। संसार की चीज़ों में, संसार तो छोड़ के आए हैं हम लोग, अगर संसार की चीज़ों में रुचि रखेंगे, बहुत से मैं भक्तों को देखता हूँ बार बार घर जाते हैं, बार बार घर से संबंध रखने से हम फिर उसी माया में पड़ जाएंगे। अगर हमें तकलीफ है किसी से तो अपने निज से है, जो हमारे शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं आती हैं ये हमें तकलीफ देती हैं। घर, संपत्ति, बाल बच्चे, परिवार, जो भी ये शरीर से संबंध है वही हमारा दुख का कारण है, और कोई दुखी नहीं करता है, दुखी अपने ही करते हैं। एक बार एक भक्त थे यहाँ पे, सन 83, 85, 86 की बात करता हूँ, वो उनकी पत्नी जो थी, शादी किया तो बहुत अच्छा था उसका संबंध, जितना बार मिलती थी पैर छूती थी पति का, लेकिन इंटर कास्ट शादी थी, तो वो भक्त से मैंने पूछा, प्रभु जी जब मिलती है माता जी तब आपका पैर छूती हैं? बोलते हाँ, दिन भर में जितना बार मिलेंगे तो उतना बार पैर छूएंगी। जब एक बच्चा पैदा हो गया तो मैं देखा एक दिन गाली दे रही थी, तो गाली दे रही थी तो टेबल के ऊपर कान बांध के और ऐसा पट सोए हुए थे। हम उनसे मिलने के लिए गए तो देखा उनको गाली मिल रही है और पट सोए हुए हैं। तो किसी ने कहा कि मैं आया हूँ मिलने के लिए, तो चुप ही ऐसे सोए रहे। तो मैं चला आया तो फिर मुझे ढूंढते आए, उन्होंने कहा प्रभु आप मेरे पास गए थे? मैंने कहा हाँ, लेकिन आपकी दुर्दशा देख करके मैं परेशान हो गया। तो उन्होंने कहा कि इसलिए मैं आया हूँ कि आपका लगा होगा ऐसा, तो इसमें आप चिंता मत कीजिए, ये मेरे कर्मों का फल है। ये हमारे जैसे आदमी को गांव में बोलते हैं औरत का गुलाम, जोड़ू का गुलाम, ऐसी भाषा में आप बोलेंगे जोड़ू का गुलाम है। और अकॉर्डिंग टू शास्त्र देखें तो जो दुश्मन इस जन्म में बदला नहीं ले पाता है, नेक्स्ट जन्म में पुत्र या स्त्री बन के आता है। तो हमने कहा आपने तो दोनों बात कहा, तो आप तो दोनों तरफ से बच रहे हैं। बोला नहीं, यही हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया, आप भागवतम पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो उस समय तो हम नया नया ज्वाइन किए थे 83 में, तो वो बोले कि जो लोग ज्ञान जिनको नहीं है वो तो यही कहेंगे हम अवरोध के गुलाम हैं, मेहर बसुआ जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में, लेकिन ये हमारे कर्मों का फल है। उस जन्म में मैंने इसका कुछ खाया है और इस जन्म में ये खा रही है मेरा। बाकी मंदिर में उनको बहुत सब डरते थे, बहुत सम्मान करते थे, गरीब बहुत सीनियर है ऐसा। हमने कहा कि ये तो सबके सामने बोलेगी तो आपका और बेइज्जती होगी, थोड़ा सामने भी बोल सकती है क्योंकि अभी उसका मुंह खुल गया है। तो बोला पहले तो चंद्रमुखी थी, अब ये सूर्यमुखी क्या हो गई है, पहले तो ये चंद्रमा के समान शीतल थी, अब जो ऐसा हो गई है। तो स्त्रियां जो हैं जब भ्रष्ट हो जाती हैं तो कुल को नाश कर देती हैं। इसलिए स्त्रियों को कहा गया शास्त्र में कि बचपन में वो माता पिता के शरण में रहती हैं, उनकी संरक्षण में रहती हैं, शादी हो जाती है तो पति के संरक्षण में चली जाती हैं, पति मर जाता है तो बेटे के संरक्षण में जाती हैं। इन्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, यही अर्जुन बता रहे हैं कि जब हम मार देंगे इन सबको तो इनकी स्त्रियां स्वतंत्र हो जाएंगी, तो वर्ण संकर बच्चा पैदा करेंगी। तो कभी भी इनको स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए, स्त्रियों को हमेशा किसी न किसी का ऊपर कब्जा होना चाहिए, नहीं तो स्वतंत्र हो जाती हैं तब परेशानी हो जाती है, तो अधर्म करने लगती हैं, अधर्म बच्चे पैदा होने लगते हैं। तो यही अर्जुन कह रहे हैं कि परंपरा को विनष्ट कर देते हैं और अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाता है। जब ऐसा स्त्रियां हो जाएंगी तो जो हमारा कुल है वो नष्ट हो जाएगा और वर्ण संकर बच्चे पैदा हो जाएंगे जो किसी काम के नहीं रहेंगे, वो ना पिंडदान दे सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, पितरों का भी पतन हो जाएगा। प्रभु ऐसे काम में मुझे मत लगाइए, ऐसा भगवान से अर्जुन कहना चाहते हैं। लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसका वर्ण संकर कैसे होगा, स्त्रियां कैसे भ्रष्ट हो जाएंगी, भगवान की इच्छा है। लेकिन उन्होंने परंपरागत सुना था कि जैसे सदाचार होता है, उस सदाचार के आधार पर अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं आचार्यों से सुना हूँ कि ऐसा होने से स्त्रियां संकर वर्ण बच्चे उत्पन्न करेंगी। तो भगवान समझ गए कि ये भक्ति के कारण और आचार्यों से सुना है इसलिए बोल रहा है, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन धर्म तो भगवान ने बनाया है, धर्म की स्थापना स्वयं कृष्ण ने किया है, तो कृष्ण ही जो कह रहे हैं साक्षात ये करो, तो उसमें ये आचार्य की बात और ये सब कहाँ रहेगी। सभी आचार्यों का आचार्य तो भगवान कृष्ण है, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, तुम जो बात कर रहे हो तो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि आचार्यों का कहना है आचार्यों के पग पर चलना ही साधु का काम है, तो तुम साधुता के कारण कह रहे हो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये भी तो धर्म है, कृष्ण जहाँ स्वयं हो तो वहाँ धर्म कहाँ नहीं है, तो भगवान चाह रहे हैं तो उसको अर्जुन को करना चाहिए। इसलिए अर्जुन को बहुत समझाने के बाद अर्जुन युद्ध स्थल में तैयार होते हैं और लड़ाई छिड़ जाती है। तो हमें भगवान कृष्ण के शरण में हमेशा रहना चाहिए। राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन। अगर कृष्ण हमारी रक्षा करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि मार सकती है, अगर कृष्ण ही नहीं चाहेंगे तो कोई भी मार देगा। इसलिए कृष्ण पर विश्वास रख के भक्ति में अग्रसर होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें भक्ति में क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान तो नहीं हो जाएगा, फायदा ही फायदा है, क्योंकि हम सबसे बड़े धनी की शरण में गए हैं। भगवान कृष्ण से बड़ा धनी कोई नहीं, बलशाली नहीं कोई, कुछ नहीं कुछ, सब कुछ भगवान से उत्पन्न, जिसको भी कुछ दिया है भगवान ने दिया है। भगवान कहते हैं गीता में बलवान का बलवत्ता मैं हूँ, जल का स्वाद मैं हूँ, पर्वत मैं हूँ, तो सब तरह भगवान, सबसे बलशाली तो भगवान है, सबसे धनवान तो भगवान है, सबसे रूपवान भगवान है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास 6 लक्षण हो, सभी लक्षण भगवान युक्त है। ऐसे भगवान के पास हम हैं तो हमें किस प्रकार की कमी हो सकती है, अन्यथा हम किसी प्रकार से कमजोर नहीं हैं, क्योंकि हम ऐसे बलवान की साथ हैं कि जिससे बलवान कोई है ही नहीं। भक्त प्रहलाद महाराज देखिए भगवान की भक्ति कर रहे थे, हिरण्यकश्यप कितना बलवान था, लेकिन प्रहलाद महाराज कभी डिगे नहीं, छोटा सा बच्चा, और उनको पता था कि हरि नाम में इतनी शक्ति है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। वो बल्कि अपने पिताजी को भक्त बनाना चाहते थे। तो अपने कुल में किसी भी के कुल में एक भक्त बन जाता है तो 7 पीढ़ी को तार देता है। और बाद में प्रहलाद महाराज ने देखा कि उनके पिताजी का वध हो गया, तो जाकर के माला पहना के भगवान को शांत भी किए। तब उसके बाद देवता होता नीचे उतरे। देवता लोग बड़े चालाक हैं, जहाँ भयंकर डर रहती वहाँ नहीं जाते हैं, तो आकाश मार्ग से ही देखते हैं खिलवाड़। जब इनका हिड़ाक्ष का लड़ाई हो रहा था भगवान से, तो देवता उस समय बादलों के झुरमुटों से देख रहे थे। वो सोच रहे थे हो सकता है यही न जीत जाए, तो जीत जाएगा तो हम सबका वध कर देगा। तो इसलिए ये देवता लोग इतने चालाक होते हैं कि भगवान पर भी भरोसा नहीं रखते हैं, इसलिए इनको भी मरना पड़ता है। तो भगवान से स्वतंत्र कोई नहीं है। तो जब देखे कि ये आप भगवान की विजय हो रही है, तब आकाश मार्ग से फूल बरसाने लगे। तो जय जयकार कब करते हैं? जीती गोल का करते हैं। जब जीती गोल है तब जय जयकार करते हैं, नहीं तो पीछे हट जाते हैं। ऐसे देवता हैं, और देवता नीचे नहीं उतरते, ये उनका विशेष यह है। कोई चोर था ना, जा रहा था कथा मार्ग में, देखा वहाँ कथा चल रही है तो वहीं उसको कांटा चुभ गया। तो कांटा निकालने लगा तो महाराज प्रवचन में बता रहे हैं कि देवताओं के पैर जमीन पे नहीं पड़ते हैं। और उसका बाप बोला था कान में अंगुली डाल लेना अगर कथा होता जहाँ होती हो, तो अंगुली डाला था, लेकिन कांटा निकालते समय तो उसे अंगुली निकालना पड़ा। इतने में उसके कान में आ गया कि देवताओं का पैर जमीन पे नहीं पड़ता, देवताओं की पलक नहीं गिरती है, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। हम लोग चलते हैं तो परछाई होती है ना। तो इतना बात वो सुना था, लेकिन वो ऐसे सुन लिया था, लोग सोचा कभी देखेंगे इसका सही है कि गलत है। तो वो घर गया, तो उस दिन उस राजा के हार को उसके घर में कोई 6 भाई थे, कोई भाई ला के दे दिया। तो उसका बाप कह रहा है देखो रानी का हार है, राजा बहुत शक्ति लगाएगा, लेकिन कोई कबूल नहीं करना, कबूल कर लोगे तो मार भी पड़ेगी और हार भी देना पड़ेगा। तो सब लोग कहे नहीं नहीं हम लोग नहीं बताएंगे। तो खा पी के सो गए। दूसरे दिन डुगडुगिया पिट गई कि राजा की रानी का हार गया है, जो लोग पाए हों ला के दे दें इज्जत से, तो उनको कुछ बख्शिश भी दिया जाएगा, अन्यथा उनको फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो ये लोग तो बड़े चोर थे, नामी चोर थे, नहीं देना चाहते थे। तो सब लोग को भेजा कि भाई जाओ, उस चोर है सबसे बड़ा, उससे पूछो। सब लोग जाए गए, बोले नहीं उसके पास नहीं है, वो लोग बेचारे नहीं लिए, अरे आपका कहाँ से ले लेंगे। तो एक बहुरुपिया ने कहा कि मैं जाऊँ, तो ले जाओ। तो देवी का रूप बना के गया, और जो एक लड़का बैठा था उस सामान लेके सब बाकी चोरी करने गए थे, उससे पूछे कि वो जाके बोल रहा है बहुरुपिया कि मैं तुम्हारी देवी हूँ, कुल देवी हूँ, और मुझे पता चला है कि इतना साल से मैंने तुम्हारा पूजा खाया है, तुम्हारे परिवार का, मुझे पता चला कि हार तुम लोगों के पास है, तो उसकी रक्षा के लिए मैं आई हूँ, तो तुम लोग को संभाल के रखो, कोई भी आए तो बताना नहीं, ऐसे ऐसे कह रही है। तो वो समझ रहा है कि हमारी कुल देवी है, बताऊं कि नहीं बताऊं। इतने में देखा अच्छा देवी है, देवता है, तो इसकी आंख का पलक गिर रहा है कि नहीं, देखा तो गिर रही थी। तो फिर बोला अच्छा इसका पैर नीचे है क्या, तो पैर नीचे था, बोला तो देवता नहीं हो सकती। तो बोला इसकी परछाई है क्या, तो परछाई भी थी। बोला वो परछाई, तो कथा सुना था उसका बहुत परिणाम अच्छा मिला। तो लोग जब चले गई देवी, जब पता नहीं चला तो जाके बोली नहीं बहुत मैंने कोशिश किया, उनके पास भी नहीं है। तब उसका पिताजी आया, तो बोला सब सकुशल है ना, तो बोला सब सकुशल है, आप बोलते हैं कथा हो तो कान में अंगुली डाल लेना, कथा होता जहाँ उधर मत बैठना, जाना नहीं। एक दिन मैंने कथा में सुन लिया था ऐसा कि देवताओं को परछाई नहीं होती है, पलक नहीं गिरती है, आज तो वही काम कर गया। तो बोलते कैसे कहे, कुल देवी बन के आई थी, बोल रही थी मैं कुल देवी हूँ, एकदम देवी है, साक्षात देवी थी। तो मैं सोचा कि वो देखते हैं जो सुनाऊँ कथा में महाराज से, वो बात सही है। तो उसकी परछाई थी और उसका पलक भी गिर रहा था और उसका पैर भी जमीन पे था, तो इसका मतलब हुआ कि वो देवी नहीं है, इसलिए हम बच गए, नहीं तो हमारा दिल हो गया था बता दूं कि हमारे घर में आया। तो कथा आज से हम सुनेंगे। तो जब कथा का इतना प्रभाव होता है कि एक बार आदमी सुन लेता है, एक बार भी भगवान का नाम प्रवेश कर गया कानों में, तो वो कभी भूल नहीं सकता है और उसकी रुचि बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कथा में आनंद लेते हैं वैसे वैसे रुचि बढ़ती जाती है और भगवान में प्रेम बढ़ता जाता है और किसी प्रकार का उसको अभाव नहीं रह जाता है। भक्त बनने से किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं रहती है। अगर आप संसारिक जीवन में भी अगर धर्म का पालन कर रहे हैं, भगवान को ऑफरिंग कर रहे हैं विदाउट लहसुन कांदा मांस मदिरा के बिना खा रहे हैं घर में, और जैसे भक्त लोग रहते हैं ऐसे जी रहे हैं, जैसे बहुत कांग्रीगेशन भक्त हैं, बहुत सारे लाइव मेंबर बनाए हैं हमारे भक्त, जाके कहते हैं ये सब छोड़ दीजिए, अपने घर में ही भगवान की भक्ति करिए, आप यहीं भक्त बन सकते हैं, तो लोग करते हैं। लेकिन उनके धंधा व्यापार में बढ़ोतरी होती है, ऐसा नहीं कि उनका धंधा व्यापार वो दिन से लॉस हो जाता है, और लॉस हो जाए तो शायद कोई भक्ति करे ही नहीं। इसलिए फायदे के लिए कहते हैं, तो भगवान भी कलयुग में यही कहते हैं कि चलो इसको फायदा भी थोड़ा दो, अगर इसकी परीक्षा लेने लगेंगे सुदामा की तरह तो छोड़ देगा। भगवान तो कहते हैं कि हम जिस पर कृपा करता हूँ उसे दरिद्र बना देता हूँ, लेकिन अगर कलयुग में दरिद्र बनाएंगे तो कोई भक्ति ही नहीं करेगा। इसलिए भगवान इस युग के लिए भक्ति में थोड़ी छूट दी है कि उनको थोड़ा आज़ादी भी देते हैं, थोड़ा धन दौलत भी देते हैं, ताकि उन्हें गरीबी न महसूस हो, किसी प्रकार का तकलीफ न हो। इसलिए भगवान जानबूझ करके हर व्यक्ति को उसकी सुविधा के अनुसार उसे फीलिंग नहीं होने देते हैं कि हमें कोई अभाव है। इस कलयुग में भक्ति इतनी आसान है कि जंगल में जाना नहीं है ना कहीं जाना है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है यो केवलम कलो नास्ते हो नास्ते हो नास्ते हो हरे था। भगवान कहते हैं और गति की कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरि नाम के सिवाय और कुछ भक्ति के बारे में कलयुग के लिए नहीं बताया गया है। इसलिए हरि नाम जो है यहाँ का नहीं है, गोलोक धाम से भगवान चैतन्य महाप्रभु लाए हैं और उसी गोलोक धन से लाए हुए हरि नाम को प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया में प्रचार किया है और पूरे दुनिया के लोग लाभ उठा रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, भक्त बन रहे हैं। जो चैतन्य महाप्रभु का सपना था उसको साकार करने के लिए प्रभुपाद जी अवतरित हुए और इसलिए प्रभुपाद कोई ऑर्डिनरी साधु नहीं है। बहुत लोग अमेरिका गए, रशिया गए, सब जगह गए प्रचार करने, लेकिन प्रभुपाद जैसा कोई सक्सेस नहीं हुआ। आज प्रभुपाद जी की नकल करके लोग जा रहे हैं, थोड़ा बहुत शिष्य बना रहे हैं और डोनेशन वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का ऐसा लक्ष्य नहीं था। प्रभुपाद जी का लक्ष्य था भक्त पहले बनो, ये नहीं कि उनका पैसा ले लो भक्त बने चाहे बाढ़ में जाए। बहुत सी संस्थाएं ऐसी उनसे पैसा ले लेते हैं और कहते हैं जो खाते हैं खाते रहिए, जैसे रहते हैं रहते रहिए, हम कोई आपको क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, कोई बाध्य नहीं करूंगा। लेकिन प्रभुपाद डंडा मार के कहते थे मांसाहार नहीं होना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए और चाय और सिगरेट पान धूम्र सब छोड़ना पड़ेगा। तुमको भक्त बनना है बनो, नहीं ना बनो, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करते थे प्रभुपाद जी। जिन लोगों को भक्त बनाया प्रभुपाद जी ने, कंप्रोमाइज करके नहीं बनाया, सबको लठ मार करके बनाया भक्त, और इसीलिए संस्था सक्सेस है, पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है। श्री राधाराज बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गौर निताई भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, फूल प्रेमानंदे हरी हरी।